इसलिए जो है वो सखियां कहती हैं, अरे सखियों घबराओ मत, यही कहीं होगा, वो नटखटिया है ना, देखो यही कहीं होगा, कोई सखी जरूर उसे लेकर के भाग गई है, देखो भला हम में से कौन नहीं है। तो देखा तो राधिका जी नहीं, अब हम श्यामा जी कह सकते हैं, उस वक्त उनका नाम श्यामा जी नहीं था, उस समय उनका नाम क्या है, राधिका जी ही कृष्ण को लेकर के भाग गई है। तो देखा तो एक सखी ने कहा, सखी आजो 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 आजो, ये देखो दो जनों के जाने के पांव के निशान है, ये देखो ये गए हैं, इधर को गए हैं, चलो ढूंढने। जब थोड़ा सा आगे बढ़े तो आगे जाके क्या देखा, राधिका रानी बेहोश पड़ी हुई। तब सबको कृष्ण जी की चिंता तो एक तरफ रह गई, राधिका जी को होश आए तो सारी बात पूछे, ओ जमुना तट जो वृंदावन, ये नहीं ओ जो गौलोक के अखंड जमुना तट है, जमुना जी है, वहां से जल ला करके उनके मुख में डाला और मुख पर जो दिया छींका, राधिका जी को होश आ गई, उठ के बैठी, पूछा राधिका जी स्वास्थ्य तो ठीक है, कहने लगे भाई सब कुछ ठीक है, पर इस नटखटिया के भी चक्कर में ना आना, इसने मार रखा है, मुझे कहते थे सब सखियों को छोड़कर मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ, तू मेरे साथ चल, मैं उनके चक्कर में आ गई, और इतना जरा मैंने कह दिया, क्योंकि सारी रात हो गई थी नृत्य करते करते, मैंने इतना कह दिया जी मेरी कमर थक गई है और मैं चल सकती नहीं, कहने लगे नहीं चल सकती हो तो मेरे कंधे पर बैठ जाओ, वो मेरी सखियों वो नीचे बैठ गए, मैं उनके कंधे पर बैठने तो जरूर लगी, बस फिर जो मेरी हालत हुई मुझे नहीं पता, कृष्ण कहाँ गए, वो नीचे से ही खिसक गए और मैं धर्म से जो गिरी मूर्छित तो हो गई, अब इतना मैं जानती हूं उसके आगे मुझे नहीं पता कृष्ण कहाँ गए और कहाँ गए। अब सब सखियां व्याकुल, जो बेचारी एक क्षण बिरहा नहीं सहन हो सकता, मूर्छित होके गिरती है, इन रात में सखी फिर खड़ी हो जाती है, इसीलिए इसको मानक देह करके कहा है, मानक कहते हैं लोहे का शरीर, कि इंद्रावती सखी इतनी दमदार लोहे जैसी स्टेनलेस स्टील थी, कभी हिम्मत नहीं हारती, कचरी मुद्दार सखी हो जाएंगे कहां, जिसका नाम श्री कृष्ण है वो कभी भी हमसे जुदा हो नहीं सकता, अरे इसे वृंदावन को छोड़ के कहीं भाग थोड़े गए होंगे, आओ अभी ढूंढ के लाती हैं, चलो सब झाड़ियों को देखो, सब कुंजवन की रेती को देखो, कुंजवन के झाड़ों में देखो यही कहीं होंगे, ढूंढ ढूंढ पत्ता पत्ता सारा ढूंढ मारा, पर वो हाथ आने वाले थोड़े, वो तो लीला कर रहे थे, जब बिल्कुल थक गई फिर भी हिम्मत इंद्रावती सखी नहीं हारती, कहने घबराते थे, अभी उसको मैं ढूंढती हूँ, जाएगा कहाँ, एक नाटक रचाते हैं सांग जिसको तमाशा कहते हैं, कहते सांग सांग किसका करोगे, कहने कृष्ण का ही सांग करेंगे, तुम बनो सखियां, कहने रे सखी चल तू पूतना बन जा, चल तू अघासुर बन जा, तू बघासुर बन जा, चल तू नंद बन जा, चल तू कंस बन जा, एक जेल बना दी, बिल्कुल वही 11 साल की जो लीला, कैसे बांके बिहारी जी ओ मतलब द्वारका जी आए, कैसे सारी बातें हुई, सारा का सारा आकर के नंद बाबा कैसे आते हैं, वो सारी लीला, पूतना आए, शंकर भगवान आए, ब्रह्मा जी आए, इंद्र का कोप हुआ, 11 साल के बाद कैसे वो शब्द कहे, वो सारी लीला हुई, अब उसके बाद जाना था योग माया में, नाटक हो रहा है, सांग हो रहा है, एक लाइन खींच दी उसी जगह वृंदावन में खड़े खड़े, ध्यान दो इधर, एक लाइन खींच दी, सखियों को कह दिया लो भाई ये क्या है काल माया और ये है योग माया, लाइन खींच दी ना, नाटक कर रहे हैं उसी जगह पर खड़े खड़े ही, कहने लगे देखो मैं अभी तुम्हें बुलाऊंगा, बस एक वृंदा वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और एक बांस की बोरी तोड़ ली, तोड़ के अब ध्यान देना जरा बड़ा समझने वाली बात है, अब वो अपने हृदय में प्यार लेकर के इंद्रावती सखी कहती है रे मेरे कृष्ण कन्हैया अब मेरी लाज नहीं जानी, मैंने नाटक रचा है कृष्ण में बनी हूं, तो लाज तेरी है मेरी नहीं, अब भी अगर बांसुरी बजाने पर जैसे आगे 52 दिन रोष तुम्हारा हो गया था तो इसी वृंदावन में बंसुरी बजा करके तुमने हमको बुला लिया था, अब मैं तेरा पार्ट प्ले कर रही हूं, मेरी लाज और तेरी इज्जत दो नहीं है। अगर तू हकीकत में मेरा सच्चा धनी है, मैं होठों पे बांसुरी रखती हूँ, तू चले आना, नहीं तो लाज तेरी जाएगी, मेरा तो कुछ जाना नहीं। बस जैसे ही इंद्रावती सखी ने वो कृष्ण का भेष तो बना ही रखा था, मुकुट मकन वहां का, होठों पे रखी बांसुरी और फूंक मारी नहीं, तब तो श्री कृष्ण जी प्रकट हो गए। जैसे ही प्रकट हो गए, सब सखियां एकदम जैसे दिल में किसी के बड़ा उदासी होती है, उस उदासी के रूप को देखकर के एकदम चुपट उठी। फिर अब हर एक सखी का दिल चाहता है कि मेरे साथ लीला करे, मेरे साथ लीला करे। वियोग हो गया, जुदाएगी हो गई ना, अब हर एक का दिल चाहता है कि भाई राधिकाई जी के साथ क्यों हर वक्त जो है ये लीला करते हैं, मेरे साथ क्यों नहीं लीला करते। तब एक एक गोपी एक एक कानव सबकी इच्छा पूरी करने की, योग माया का ब्रह्मांड है, वहां जो कुछ भी कोई मांगता है तुरंत तो उसको प्राप्त होता है। जैसे जैसे सबकी इच्छा हुई, जितनी गोपियां थी उतने ही श्री कृष्ण जी ने अपने रूप धारण करके सबके साथ जो है लीला की, सबकी मनोकामना पूर्ण कर देने के बाद फिर जाकर के जमुना जी, ये नहीं भाई ये तो ब्रह्मांड ही नहीं था, उस जमुना जी में स्नान किया, वस्त्र उतारे, नया श्रृंगार किया। अब वहां टेबलें और सोफे और सिंहासन तो था नहीं, उतारे हुए कपड़ों का ही सिंहासन बना के एक अच्छी सी साड़ी ऊपर रख दी, कृष्ण कन्हैया को वहां बिठा दिया कि लो नंदलाला बैठो। अब सखियां कहां जाती हैं, वहां कोई मिठे घर तो नहीं, पंच भौतिक शरीर तो है नहीं कि घर से जुदा जुदा डिब्बे भर के ले आए बन फल, और वो भोग भी लिखा है फिर तन फेर बेजोटिया। वन में जाकर के सखियों ने, किसी ने बेर, किसी ने अनार, किसी ने आम, किसी ने अखरोट, किसी ने बादाम, मतलब कोई फल ऐसा नहीं था, सब तोड़ तोड़ के ला करके श्री कृष्ण जी के सामने रखे और बड़े प्यार के साथ भोग लगा रही है और सखियां बैठी के पास बातें कर रही है, अरुगा रही है। जब उन्हें खिला रही है, खाते खाते श्री कृष्ण जी ने पूछा, भाई सखियो एक बात तुम्हारे से पूछते हैं, जरा प्रेम से बदलाओ। पूछो जी क्या हुक्म है। कहने लगे वृंदावन कैसे लगा। कहने लगे वृंदावन आहा मजा आ गया। कृष्ण कन्हैया अरे क्या था ब्रिज इसके सामने, ब्रिज में तो रोज सास दुखी करती थी, ससुर दुखी करता था, घर वाला भी हर वक्त लड़ता रहता था और बच्चे भी दुखी करते रहते थे, मजा आ गया वृंदावन का। और क्या कहने इस कुंज बन के, आहा चंद्रमा की चांदनी और श्री जमुना जी का जल और ये कुंज बन की रेती। पर कृष्ण कन्हैया सच्ची पूछते हो तो सच्ची बात ये है, शमशान घाट है ये। अब सुन के श्री कृष्ण कन्हैया राजजी महाराज एकदम हैरान हो गए कि आधा घंटा तो इन्होंने वृंदावन के गुण गाने में लगाए हैं कि यह वृंदावन ऐसा सुखदाई है, ऐसी मीठी बांसुरी है, ऐसा मीठा जमुना तट है, ऐसी जमुनी वृंदावन है, इतना सुहावना चंद्रमा है और शून्य बिल्कुल शून्य मंडल और शमशान घाट तुमने कह दिया, ये क्या बात है। कहने लगे उस सोने को क्या करें जो कान फाड़े, तेरा वृंदावन बहुत बढ़िया है पर आग लगाने वाली इसमें जो जुदाएगी है, तुम्हारी जुदाएगी एक खिन के लिए भी हम बर्दाश्त। तुम जुदा जो हो गए थे, इसका मतलब है वृंदावन तो सुख देने वाला जरूर है पर यहां तुम्हारी जुदाएगी भी हो सकती है, इसलिए हमें वृंदावन में नहीं रहना, हमें वहां लेकर के चलो जहां कभी भी हम तुमसे जुदा जुदाएगी ना। हे मेरे वाला जी वहां लेकर के चलो जहां एक मिनट की जुदाएगी ना हो, ये वृंदावन हमें अब सुहाता नहीं, ये नहीं हमें दे, ये वृंदावन हमें नहीं देना, जिसको दिखाना है दिखाना, हमें वहां ले चलो जब एक मिनट भी एक खिन के वास्ते भी हमारी आंख भी नीचे पलके तो हमारे सामने तुम खड़े रहो, वहां ले चलो। तब श्री राज जी बोले क्या भाई सत्य हो तो फिर एक खाली परम धाम, परम धाम के बिना बाकी सब जगह जुदाएगी हो सकती है लेकिन परम धाम ही है जिस जगह पर हमारा अखंड घर है। तो कहने लगे जी फिर वहां ले चलो हमें यहां नहीं रहना। अब सुंदर साथ जी सोच करके बोलना, भले बाकी की लीला कल चले जाएगी, क्योंकि यहां पर आकर के हमारे प्रणामी सुंदर साथ भी भूल जाते हैं और भटक जाते हैं। जब उनको उस कृष्ण बंसरी वाले से छुड़ाने के लिए कहा जाता है, नया ज्ञान सुनाने वाले आ गया है, इतने इतने बड़े लोग हो गए, इतने इतने बड़े प्रचारक आए हैं, किसी ने आज दिन तक नहीं बनाया, लो जी आज बंसरी वाले को ही छोड़ के बैठते हैं, हाय हाय। बंसरी एक नाटक लीला करने के लिए राजी ने पकड़ी थी, परम धाम में कोई भी बंसरी नहीं। अब जिसको ना विश्वास आए वो श्रृंगार किताब खोल ले, श्रृंगार के अंदर 8 बार श्री राजी महाराज ने श्रृंगार का वर्णन अपना बताया है, 4 बार शीश कमल से लेके चरण कमल तक और 4 बार चरण कमलों से लेके शीश कमल तक के परम धाम में राजी का और श्यामा जी का और सुंदर साथ का श्रृंगार क्या है। बंसरी का मतलब बंसरी लीला करने के लिए या ब्रिज में पकड़ी और या रास में पकड़ी। अब सखियों ने क्या कहा कि हमें रास नहीं चाहिए, हमें कहां ले चलो जहां हम कभी भी तुमसे जुदा ना हो सके। अब तन तो परम धाम में जाने नहीं, जाना किसने है बोलो, परम धाम से क्या आया है, आत्मा आई है, आत्मा ने ही जाना है। राज जी ने अपना आवेश उसमें से निकाला, अक्षर की आत्म को निकाला, अक्षर की आत्म अक्षर धाम, राज जी का आवेश राज जी के तन में और बांके बिहारी का तन ज्यों का, क्योंकि उसका कभी भी नाश होना नहीं, और राधिका जी में बैठी हुई श्यामा जी की आत्म निकलेगी कि नहीं बोलो, निकली और निकल करके वापस श्यामा जी के अंदर। हम सब सखियां जो उस समय वहां थी वो तन ज्यों के त्यों है, आज भी खड़े हैं, आत्माएं निकल करके वापस मूल मिलावे में। अब इन चीजों का प्रमाण सुंदर साजी संसार के ग्रंथों में नहीं मिलेगा, क्योंकि उस समय संसार बोलो था ही नहीं, कोई ऋषि नहीं था, कोई मुनि नहीं था, कोई देवी देवता नहीं था, कोई तीर्थंकर नहीं था, इन बातों को कौन लिखता। इसलिए जब तातम पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, सो तो अब जाहिर अब बल अब योग माया तक सारे शास्त्रों में प्रमाण है, गीता में है, हरवंश पुराण में है, भागवत में है, महापुराण में, सब ग्रंथों में वृंदावन की लीला सारी बराबर लिखी हुई है। उसके बाद अब हर कोई उसी को ही समझ रहा है कि बंसरी वाला ही श्री कृष्ण अनादि अक्षरातीत है, नहीं छोड़ दिया वो तन, छोड़ दिया किसके लिए बोलो, अक्षर ब्रह्म के लिए, क्योंकि अक्षर ब्रह्म ने क्या मांगा है कि मुझे ब्रिज भी अखंड कर दो और राज भी अखंड कर दो, इसलिए वो तन दे दिया उनको कि ले भाई तेरी लीला तेरी माया, परम अक्षरधाम में बैठ करके इनको देखा था लीला आज हो रही। अब उधर क्या होता है, जब श्यामा जी और सब सखियां अपने तन में, नींद का आवरण तो था लेकिन होश आई जरा, राजी से झगड़ने बैठी कि राजी महाराज बस यही प्रेम है तुम्हारा, अरे छोटा सा तुम्हारे से हमने एक खेल मांगा था और एक छोटी सी ब्रिज गामड़ी दिखा के वापस ले आए हो, तुमने तो कहा था वहां टैबलेट खाने पड़ेंगे, तुमने तो कहा था वहां कैप्सूल खाने पड़ेंगे, आपने तो कहा था वहां बीमारियां होंगी इंजेक्शन लगेंगे, आपने तो कहा था लाइन में खड़े होकर के डिप्पू में मिट्टी का तेल लेना पड़ेगा, आपने को तो कहा था मुकदमे चलेंगे कचहरियां देखोगे, आपने तो जो मतलब झंझट संसार का नरक ब्रिज में कुछ भी नहीं देखा था, वो सारी सखियों ने ताने मारे राजी महाराज को कि राजी महाराज क्या कर लिया तुम्हारी माया ने, तुम तो कहते थे माया में जाकर के भूल जाओगे, एक बार भी नहीं भूले, तुम बंसरी बजाते थे हम घर वालों को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के, सबको छोड़ के पड़क सारा दिन तुम्हारे साथ जमुना तट पे रहते थे। क्या कर लिया तुम्हारी माया ने? पर राजी महाराज हो तुम धोखेबाज, इतनी बड़ी माया के गुण देकर के एक ब्रिज गांव में दिखा के ले आए हो। हमने तो पूरी देखनी है, देखनी है, देखनी है। और अब हमें कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस भी हो गया है, तजर्बा भी हो गया है कि माया कुछ भी हमारा बिगाड़ सकती नहीं। अब राजी ने सोचा, लो भाई, एक तो इन पर भला किया कि इनको दुखी ना होने दे, एक ये उल्टा मेरे ही सिर पर सवार हो रही है। फिर भी बहुत समझाया कि सखियो, माया ऐसी दुष्टनी है कि इसका नाम भी नहीं लेना चाहिए। और तुम देखना कह रहे हो, जैसे चावल की देगची में जब चावल चढ़ाते हैं दृष्टांत तो देने के लिए, हो जाते हैं तो एक एक चावल तो नहीं देखते, करछी के पिछली तरफ से देख लेते हैं, हो गए भाई उतार दो, हो गए हो गए। एक जरा सा सैंपल से ही नमूना देख लो। ब्रिज में मैंने तुम्हें एक माया का दृष्टांत सैंपल दिखाया है। ये माया तुम्हें इतना दुखी कर देगी। अगर पूरी माया देखना चाहते हो तब जुदा जुदा गांव, जुदा जुदा देश, जुदा जुदा नगर, जुदा जुदा भाषा, जुदा जुदा धर्म, जुदा जुदा देवी देवता, जुदा जुदा पानी, आग, पानी, पत्थर को तुम देवी देवता बन के खुदा मना के पूजोगे। सफेद पत्थर मिलेंगे सालक राम कह दोगे, काले पत्थर मिलेंगे और महादेव जी कह के पत्थरों की पूजा करोगे, आग पानी पत्थर की पूजा करोगे और तुम्हें समझाया जाएगा। समझोगे नहीं, क्या कहोगे? ले नए रस्मों रिवाज लेकर के चले आए हैं जी, बड़के हमारे कदीम के। बड़के का मतलब समझो ना, वड्डे बाप दादा। बड़के हमारे कदीम के पूजत आए ए, भले आग पानी पत्थर है पर रब बाप दादों का, जिसको बाप दादा ने मान रखा रस्मों रिवाज ही छोड़ दे, क्या बुजुर्ग हमारे बेवकूफ थे? सुंदर साहब जी, बात तो बात के साथ कहनी पड़ जाती है। शादी हमारी हुई थी, पत्नी भी बैठी है, लेकर के घर आए हमारे माता जी। उस समय रिवाज होता था, दो कुनिया खाली रख के कपड़ा ढक दिया। जब हम लोग आए अंदर गलीज के, हमारे माता जी कहने लगे, काका मत्था टेको इसको। कभी ये क्या है माता जी? कहने लगे, वड्डे हैं, वड्डे वडेरे हैं, वड्डे वडेरे नु मत्था टेकी दे। पता नहीं भैया राजी जाने, मैं कोई अपनी बड़ाई नहीं कह रहा, ना मैं इसका भल, मेरे मुंह से ना निकली। मैं कह जी, मेरे वड्डे वडेरे तो आप हैं और पिताजी थे, ये वड्डे वडेरे तुम्हारे हैं, तुम ही मत्था टेक रहे हो। मैंने उनका कपड़ा हटाया, कुनियों को एक तरफ करते थे और यहां सब बैठे जानते हैं, पहले बुजुर्ग लोग ऐसे करते थे कि बड़के मर गए बाप दादा, अब बाप दादा बनाने के वास्ते किसको रख लेते थे? कुनियों को रख के कपड़ा ढक देते थे और कहते थे, यही बाप दादा है, इनको मत्थे टेको। चक्कियां पिसवाना, जंडियों की पूजा करवाना, ऐसी ऐसी चीजें दुनिया की रीति थी। ये सारी बातें राजीव राज ने परमधाम में समझा दी। सचिव ने कहा, राजीव राज हमने देख लिए, माया है एक और हम है बारह हजार। एक एक भी मुक्का मारेंगे ना, हम माया का भरसा निकाल के रखेंगे। माया कुछ हमारा बिगाड़ नहीं सकती। उनका अच्छा हो जो तैयार, जब तुमने नहीं मानना, धनिये मना किया बेर बेर बेर, तब हम मान गया फेर फेर फेर। जैसे जैसे वो मना करने लगे, जैसे बच्चे को कहना ये नहीं करना तो बच्चा जानबूझ के जिद करता है कि भाई ये कोई अच्छी चीज है, तभी मुझे मना कर रहे हैं। सखियों ने क्या समझा कि दरअसल माया जो है कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, तभी राजी महाराज मना करते हैं, पर हमने देखना जरूर है। अब अक्षर को हुक्म दिया, अक्षर राम बना दे खेल। कहने लगे, जी खेल बनाऊं? कहने लगे, हाँ। कहने लगे, ये तो कृष्ण किसको बनाऊं, खेल तो बना दूंगा। ब्रिज और गोकुल के जो जीव अखंड कर दिए हैं योग माया में, ध्यान दो, कर दिए कि ब्रिज में, वो जीव तो मैं पैदा कर दूंगा नया, और विष्णु भगवान भी नया बना दूंगा, कृष्ण कौन बनेगा? कहने लगे वो चिंता ना कर, वो भी मैंने कुछ लीला बाकी रखी हुई है, क्योंकि राजी तो सब जानते थे। क्या लीला बाकी रखी हुई है कि जब पहला ब्रिज था जान दो कुमार का सखियों की लीला, जो मैंने उस समय जानबूझ करके नहीं समझाई, क्योंकि उसका लिंक यहां आता है। पहली ब्रिज जा थी, जब पहली बार नंद के घर आए थे, उस समय की बात है कि अक्षय ब्रह्म की जो सुरताएं थी, एक राज्य महाराज की ब्रह्म सृष्टि आत्माएं हैं, अक्षर की सुरता को कुमार का सखियां कहती हैं। वो भी जब छोटी छोटी होती होती 10-11 साल रही तो बड़ी हो गई, जवान हो गई, तो वो रोज श्री कृष्ण जी से ये कहने लगी कि ऐ कृष्ण कन्हैया, आप इन गोपियों के साथ जो लीला करते हो, हमारे साथ भी उसी तरह जब बंसरी बजा करके हमारे साथ भी लीला करो। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारे साथ लीला नहीं की जाएगी, मना कर दिया ज्ञान के साथ। तो उसके बाद सखियों ने, वो जो कुमार का सखियां थी, उन्होंने प्रण क्या कर लिया कि ऐसे करो, ऐसे कृष्ण कन्हैया हाथ में आने वाला नहीं, कल जमुना जी में चल के नगन स्नान करो, वस्त्र उतार करके ना, वैसे ही युवा कन्याएं थी और कुमार का सखिया, उनका नाम है, भागवत में लिखा है कि नगन स्नान करेंगे, सारे ब्रिज के अंदर बदनामी कृष्ण कन्हैया की हो गई, एकता हो गई, चले गए कपड़े उतार करके और जमुना तट पे रख दिया और नहाने लग गए। अब ये बात श्री कृष्ण अक्षरातीत राजीव राज जो समय ब्रिज में 11 साल की लीला कर रहे थे, उनको पता चल गया कि ये तो सारा कलंक हमारे ऊपर आएगा। चले गए वहां जमुना तट पे, सबके कपड़े उठा लिए, उठा लिए कपड़े, ये ना मां समझो कि नहीं चीर हरण किए, चीर हरण करके वृक्ष पर बैठ गए। कहा कि अब जो सखी लीला करना चाहती है निकलो बाहर, हम उसके साथ लीला करेंगे। सुंदर साहब जी, आप अच्छी तरह से जानते हो, युवा कन्या जो होती है, मर मिटे भले, मां के सामने भी अपना जो है शरीर नंगा नहीं कर सकती। प्राकृतिक इतना पर्दा युवा कन्या के ऊपर आ जाता है। अब वहां सारी कुमार का कन्याओं ने हाथ जोड़ करके क्षमा मांगी कि कृष्ण कन्हैया आज माफ कर दो, हम जमुना से बाहर तो नहीं निकल सकती, मर तो भले अंदर ही जाएंगे, गल जाएंगे यहां पर, बिन वस्त्र पहने बाहर नहीं निकल सकते, हमें क्षमा कर दो, हम दोबारा कभी भी जमुना तट में आके इस तरह से नगन स्नान नहीं करेंगे। और कोई भागवत के सुनाने वाला बताता नहीं, इसलिए कई हमारे हिंदू धर्म की माताएं बहने कार्तक के महीने में जमुना तट पे या नदी पे जाके जरूर स्नान करती हैं कि भाई इस महीने में स्नान करेंगे तो कृष्ण कन्हैया के दर्शन होंगे। अर्थ उल्टा है, श्री कृष्ण कन्हैया ने मना किया कि खबरदार आज के बाद वस्त्रहीन होकर के किसी ने जमुना में स्नान किया। उन्होंने कहा बिल्कुल ऐ धनी, ऐ प्रभो, हम कभी भी जमुना तट में आज के बाद जो है वस्त्रहीन होकर के कभी स्नान नहीं करेंगे, पर एक अर्जी हमारी भी सुन लो कि हमारे साथ भी तो लीला होनी चाहिए। कहने लगे अच्छा यही चाहते हो, जाओ तुम्हारे साथ भी लीला होगी। वचन दे दिया होगी, कर सकते नहीं, क्योंकि सुरता किसकी है, अक्षर की, और खुद कौन है, अक्षरातीत है, अक्षरातीत अक्षर के साथ लीला कर नहीं सकते। अब ब्रह्मांड हो गया अखंड, वो सखियां अखंड हो गई कि नहीं, ब्रिज अखंड हुई तो वो अखंड हो गई कि नहीं हो गई, और वो जीव भी अखंड हो गए। इसलिए अब श्री राजीव महाराज ने कहा कि नया ब्रह्मांड बनाओ और ऐसा कर दो कि दुनिया के ऊपर जो महाप्रलय का पर्दा दिया था उसको उठा दो, दुनिया को ना पता लगे, दुनिया यही समझे कि हम सो करके उठे हैं। तो कहने लगे जी फिर कृष्ण, कहने लगे नया विष्णु भगवान को कृष्ण बना, नया विष्णु भगवान निर्माण कर, ये जो आज बैठा है विष्णु भगवान बैकुंठ के अंदर, ये नया बना इस दुनिया में। पहले वाला कहां गया और क्या वो बन गया, बाल मुकुंद शाबाश, बस इतनी सी बात समझते जाओ, अब कुछ भी मुश्किल नहीं आगे समझ। अब इस विष्णु भगवान को 12 साल का तन दिया और ऊपर शक्ति कौन सी डाली, गौलोक की, गौलोक की शक्ति डाल दी इस विष्णु भगवान पर जो आज वैकुंठ में बैठा हुआ है। इसने इस मथुरा वृंदावन में आकर के बांसुरी बजाई। अब सखियां कौन सी आई, ओ कुमार का सखियां जिनको वायदा दिया था कि तुम्हारे साथ लीला होगी पर हुई नहीं, उनके साथ जीव है ना, तो जीवों के साथ कौन लीला कर सकता है? विष्णु भगवान ही कर सकता है। इसलिए वो जीवों की शक्ति यहाँ आई इस मथुरा वृंदावन में और एक रात की रास की लीला हुई। जो पढ़ना चाहे सुख सागर में पढ़ लो, और ऐसी माया का आवरण डाल दिया कि वो रात यहाँ वाली 24 घंटे के हिसाब से 6 महीने लंबी रात ही रही, दुनिया नींद में पड़ी रही। सुख सागर में लिखा हुआ है, जिसमें पढ़ना हो सुख सागर ग्रंथ खोल ले, दसम स्कंध खोल ले और उसमें पढ़ ले लिखा है कि नहीं। भागवत में नहीं लिखा, भागवत में नहीं है, सुख सागर में स्पष्ट लिखा है कि यहाँ काल माया की रात्रि जो थी 6 महीने की हो गई और उन गोपियों को जो सुख देना था वो इस वृंदावन में दिया। और अब प्रमाण क्या है कि उस समय एक नरसंहार, नरसिंह मेहता नहीं, नरसिंह मेहता अब हुआ है 1774 में, और वो रास कब हुई? 5000 साल हो गए। कई लोग उस समय अर्थ करते समय नरसिंह को क्या कह देते हैं जी, नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता उस समय पैदा ही नहीं हुआ था, नरसिंह मेहता का जन्म 1774 में हुआ, उसकी लाइफ हिस्ट्री उठाइए। ओ स्वामी जी ने क्या लिखा है, नरसिंह एक भक्त था कृष्ण का। अब जब उसने बंसरी सुनी तो वो बंसरी की सुन करके ध्वनि रास देखने के लिए वृंदावन में पहुंच गया, यहां इस मथुरा वृंदावन में। अब रात्रि अंधेरी थी, हाथ में मिसाल ले आया, अब अंदर रास हो रही है। सुंदर साजी एक प्रमाण नहीं, कई प्रमाण दूंगा, अंदर रास हो रही है, लेकिन वो आड़े दरवाजे चार आगे आया कि वो नरसंहार अंदर क्यों नहीं जा सका, क्योंकि आड़े चार दरवाजे आ गए। किसका? सूक्ष्म, स्थूल, कारण और महाकारण, ये चार पर्दे हैं जीव के आगे। सूक्ष्म क्या है? जो हमारा जीव। स्थूल क्या है? हमारा शरीर। कारण क्या है? ये सारा ब्रह्मांड। और महाकारण क्या है? योग माया। जब तक योग माया की शक्ति नहीं होगी तब तक कोई भी इस रास के अंदर भी जा सकता नहीं। अब दूसरा प्रमाण भागवत का लो, शंकर भगवान जी इस रास को देखने के लिए आए। ये शंकर भगवान जी, बांसुरी जब सुनी, ये शंकर भगवान जी इस वृंदावन में रास देखने के लिए आए। पहरे पर बैठी हुई सखी कहती है, शंकर जी रुक जाइए, अंदर नहीं जा सकते, जाओ पहले गोपी का तन धारण करके आओ, जब तक गोपी नहीं बनोगे तब तक इसके अंदर जा सकते नहीं। ये प्रमाण भागवत के अंदर है, नरसंहार वाला जरूर नहीं है, लेकिन शंकर भगवान जी का प्रमाण व्यासदेव जी ने लिखा, व्यास जी ने लिखा है कि शंकर भगवान जी दर्शन करने के लिए गए पर अफसोस वापस आ गए, क्योंकि वो गोपी बन नहीं सके। ये 6 महीने की रात, उसके बाद 7 दिन तक सूर्य, फिर सवेरे सूर्य निकला और दुनिया ऐसे उठी जैसे पहले उठे करती थी, किसी को पता नहीं चला के बीच में महाप्रलय होकर के योग माया के ब्रह्मांड में कोई रास हुई है। इसलिए उस रास का प्रमाण देने के लिए यहां पर रास रखी गई, क्योंकि सत्य के साथ जब तक उसका प्रतिबिंब नहीं होगा तब तक कोई भी उसकी पहचान करा नहीं सकेगा। स्वामी जी कहते हैं, ओ ब्रह्म सृष्टियों, तुम्हारे सत्य के वास्ते हमको ये दोबारा जो है प्रतिबिंब की रास भी दिखानी पड़ी, ताकि दुनिया को शास्त्रों के प्रमाण से समझाया जा सके। ये रास हुई एक रात की। उसके बाद जो ब्रिज में लीला श्री कृष्ण जी करते थे, इस विष्णु भगवान ने उन गोपियों की आत्मा का जो जीव आकर के यहां बने उनके ऊपर बैठ के 7 दिन गोकुल की लीला की। उसके बाद कंस जी ने अक्रूर को भेज दिया कि जाओ नंद जी को और कृष्ण जी को यज्ञ रचाया, मतलब हजारों प्रयत्न कर चुके थे मारने के, कृष्ण काबू में आ नहीं रहा था। आखिर क्या योजना बनाई कि यज्ञ रचा करके अपने घर बुला लो और यहाँ कृष्ण को मार डालेंगे। अब अक्रूर लेने के लिए गया, वो व्याख्या आप अच्छी तरह से जानते हो। पहले अब अगर ये श्री कृष्ण होते तो क्या राधिका और सखियों से जुदा हो सकते थे कभी? बोलिए, बड़ी राधिका ने रो रो के व्याकुलता जाहिर की, सखियां रो रो के रथ के आगे पड़ गई, यशोदा रो रो के व्याकुल हो गई, श्री कृष्ण जी ने एक भी नहीं मानी। और राधिका जी को वचन दिया कि राधिका तू भरोसा कर, अरे मामा ने बुलाया है भाई, उसका यज्ञ है, मैं कोई यज्ञ के बाद वहां राज करने थोड़ा जा रहा हूं, चार दिन में यज्ञ खत्म हो जाएगा और उसके बाद मैं भागवत पढ़ो। सखियों को वादा किया, यशोदा जी को वादा किया और राधिका जी को वादा किया कि मैं आ जाऊंगा, लेकिन सबको छोड़ करके चले गए और जाके जमुना जी में अक्रूर जब लगा नहाने, डुबकी मारे तो अंदर कृष्ण, बाहर देखे तो कृष्ण संशय मिट गया। पहले समझ रहा था कि शायद ये कोई इंसान ही है, संशय मिट गया, नहीं भगवान है, लेकर के गया। अब खुद ही जैसे भविष्यन ने सारे भेद रावण के बता दिए थे, इस तरह अक्रूर ने सारे भेद कंस के बता दिए, कि भगवान यहाँ ना जाना, यहाँ पर कुआं खोद रखा है, यहाँ पर हाथी खड़ा है, यहाँ पर ये है, बस डंडा मुश्किल जो कुछ भी रास्ते में आते चले गए उनको मारते चले गए। कहने का मतलब क्या कि साथ